باقی آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری پراتن یگیہ سے جب دادیاں بھارت ورش میں سیوا کے لیے آئی تھی تو اس سمے ان کی بھاشا کوئی ہندی اتنی شدھ نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہاں پر سندھی ہونے کے کارن سندھی بھاشا کا ہی پریوگ کیا جاتا تھا, اس لیے بھاشا تھوڑی صاف نہ ہونے کے کارن کوئی شبد ایسے ہوتے تھے جس سے کئی بار کئی نئے نئے لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے. ایک شبد تھا ہماری بہنوں کا کہ کوئی نیا جگیاسو آ جائے تو جب تک اس کو کوئی بہلائیں. تو ایک بار کوئی نیا ویکتی آیا اور کافی بڑی عمر کا تھا, تو جیسی ہماری دادیاں بولتی تھی ہم نے بھی ان سے ویسا ہی بولنا سیکھ لیا. تو ہم نے اپنی بھنڈارے والی بہن کو کہا کہ میں کچھ کر رہی ہوں, میں ابھی کر کے آ جاؤں گی, آپ جب تک اس بھائی کو تھوڑا بہلاؤ کا مطلب کچھ بابا کے یگیہ کی گتی ودھیاں یا یہاں کا نیم مریادے کچھ ان کو سناؤ. تو اس نے سپشٹ جاتے ہی کہہ دیا, کیونکہ بھنڈارے کی ماتا تھی بیچاری سدھارن تھی, اس نے کہا کہ ہماری دیدی جی ذرا ویست ہیں, انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو بہلاؤں گی. اب یہ شبد سن کر وہ بیچارہ چکرت ہو گیا کہ میں اتنا بڑا بزرگ ہوں اور یہ ماتا مجھے بہلانے کے لیے کیسے آ گئی. اب میں نے تو ماتا اپنی سمجھ کے اس کو کہہ دیا اب جب تک بہلاؤ, اور اس نے اسی کو جا کے کہہ دیا کہ مجھے بھیجا ہے کہ میں جب تک آپ کو بہلاؤں. تو کئی بار ایسے شبد جن کا پریوگ نیوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے وہ نیوں کے ساتھ کر دیا جائے تو نیا بھیت ہو جاتا ہے. ایک بار کی بات ہے, کیونکہ شروع میں جب اس ایشوری وشو ودیالیہ کی استھاپنا بھارت ورش کی سیواؤں میں ہوئی اس سمے لوگوں کے اندر برمک مائز کے لیے کئی بھرانتیاں تھیں, اور ان بھرانتیوں کے کارن کئی لوگ ڈرتے تھے کہ برمک مائز سنستھا میں ہم نہیں جائیں گے, یہاں شاید سرما پہنا دیتے ہیں یا کچھ جادو کر دیتے ہیں. تو ایک بار کی بات ہے کہ کوئی دو جگیاسو ہمت رکھ کے پیارے بابا کا گیان سننے کے لیے آئے, اور کمرہ بڑا تھا, ایک طرف وہ نئے جگیاسو بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف پردہ لگا تھا. تو اپنی ایک دادی جی جس بہن کو ان دو بھائیوں کو اٹینڈ کرنے کے لیے جانا تھا ان کو کہہ رہی تھی کہ دیکھو یہ ہمارے یہاں کے بڑے پرمکھ ویکتی آج پیارے بابا کے گھر میں آئے ہیں, ان کو اچھی طرح پکڑنا, جانے نہ دینا. اور انہوں نے پردے کے پیچھے سے سن لیا کہ کسی بہن کو ہمارے پاس بھیجا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اچھی طرح پکڑنا. اب آپ سمجھتے ہیں پکڑنے کا مطلب یہی تھا, کتنی اچھی طرح یوگ یکت ہو کر انہیں گیان سنانا تاکہ وہ ویکتی پیارے بابا سے ورثہ لیے بنا چلے نہ جائیں, بابا کے بن جائیں. لیکن نیا ویکتی اگر یہ سنے اور ڈر کے وہ پہلے ہی آیا ہوا ہے, اور اگر یہ سن لے کہ بھئی ان کو اچھی طرح پکڑنا तो दोनों बेचारे भाग उठे वहां से, और जब भागे तो बहन ने कहा एक भाई को कि भाई इनको पकड़ के लाओ, क्योंकि ये तो भाग गए हैं। अब भाई उनके पीछे भाग रहा है, भाई जी भाई जी, वो तो बेचारे जान बचाकर चले गए। पता नहीं जाकर लोगों को उन्होंने क्या कहा होगा कि हम तो गए बचकर आ गए, कहीं और ना कोई चला जाए। इसलिए बाबा भी हमेशा कहते हैं कि जब भी बोलो तो युक्ति युक्त बोलो, ऐसा बोल ना बोलो जो किसी को भ्रांति पैदा हो जाए। तो ये मैं भ्रांति के दो शब्द सुनाए आप सबको कि हमारी बोली भाली हमारी दादियां बड़े प्यार से ऐसा कह देती थी, और हम भी उन भोले बालों को ऐसा फॉलो करते थे कि जैसे वो कहती थी वैसे हम भी बोलने लग जाते थे, समझते दादियों ने बोला तो हमने भी ऐसे ही बोलना है। लेकिन आज वो समय आया है कि बहुत समझदार बाबा के बच्चे होते जा रहे हैं। अब गुलजार दादी के विषय में मुझे कहा गया कि कल 12 तारीख शाम को आप क्लास कराना, तो मैं दादी के विषय में तो अभी ज्यादा नहीं सुनाना चाहती हूँ। आपको 10-15 मिनट ही बिठाया गया है, तो मैं दादी की एक बात जरूर सुना देती हूँ। एक बार मधुबन में हम कुछ सेवा केंद्रों की प्रमुख बहनें आपस में बैठी हुई थी और इस बात की चर्चा चल रही थी कि बाबा बच्चों को कहता है कि बच्चे एक समय ऐसा आएगा कि पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे, कहीं आग लगेगी, कहीं भूचाल आएगा, कहीं बाढ़ लगेगी, कहीं तूफान होगा। आप सोचिए ऐसे समय पर हम अपने बचाव के लिए क्या करें। किसी ने कहा बचाव की तो बात पीछे छोड़िए, अगर ऐसी मूसलाधार वर्षा हो या कुछ वातावरण में प्रदूषण इतना फैल जाए कि हमारा अनाज ही प्रदूषित हो जाए, हम बचे तो सही लेकिन हम कुछ खा पी ना सकें, तो जीवन कैसे चलेगा। तो एक बहन ने कहा भाई इस पर तो मैंने कुछ प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है। तो सब बड़े एंक्शियस हो गए सुनने के लिए, क्यूरियस थे कि क्या प्रैक्टिस आपने, खाना चीजें सब दूषित हो जाए और उस समय भी आपको खाने के लिए कुछ मिल सके, या आपने क्या प्रैक्टिस शुरू की है ताकि हम भी कर सके। तो उस बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि मैंने ऐसा सोचा कि अगर खाने के लिए कुछ दिन ना मिले, दूषित वातावरण के कारण हमारा अनाज विषैला हो जाए, उससे पूर्व हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। तो मैं कभी कभी एक टाइम खाना खाती हूँ, एक टाइम खाना नहीं खाती हूँ। किसी दिन सारा दिन मैं पानी नहीं पीती, और कभी कभी सारा दिन कुछ नहीं खाती, ताकि ऐसे समय के लिए हम अपने को तैयार कर सके, ऐसा ना हो कि अंत में जाने के समय खाना पीना ना मिलने के कारण हम उसी चिंता और चिंतन में चोला तज दे। तो मैंने इस प्रकार का अभ्यास करना शुरू किया है। अभी दादी मीटिंग हॉल है, मैं समझती यहाँ या पांडव भवन, मुझे वो जगह का ख्याल नहीं आ रहा, तो हम आपस में अभी चर्चा कर ही रहे थे, इतने में गुलजार दादी जी वहां से निकल रहे थे। तो हमने कहा दादी अगर आपके पास समय हो तो आप बैठ जाइए, क्योंकि दादी जी ने कहा कि क्या चर्चा हो रही है। तो हमने कहा कि आप हमारी चर्चा को सुनिए, क्या चर्चा हो रही है। तो दादी जी ने कुर्सी पर बैठ गए, तो हमने दादी को सुनाया कि अपनी ये बहन अपना पुरुषार्थ बता रही है कि जल दूषित हो जाए, भोजन विषैला हो जाए, खाने को कुछ दिन ना मिले, तो किस प्रकार हम इससे पूर्व कभी व्रत करना या कभी पानी ना पीना ऐसी आदत डाल लें। तो दादी ने सारा सुना, हमने डिटेल में सब बातें सुनाई, मैं अभी नहीं सुना रही। तो दादी ने फौरन बड़े मधुर शब्दों में कहा कि मैं तो ऐसा नहीं समझती हूं। तो हमने कहा, दादी जो आप समझते हैं आप वो बताइएगा। तो दादी ने उस समय कहा कि बाबा ने यज्ञ में ऐसा भी समय आया जब सुबह के नाश्ते का सामान है लेकिन खाने का कुछ नहीं है, ऐसी बेगरी लाइफ थी, तब भी बाबा ने बच्चों को व्रत नहीं रखाया, कभी भूखा रहना नहीं दिया। कभी ऐसा भी समय आया कि नाश्ते के लिए कुछ नहीं है, तब भी बाबा ने गुड़ में सोडा डाल करके जो इतना गुड़ इतना हो जाए उसको बॉर्नवीटा का नाम देकर बच्चों को खिलाया, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं रखा। तो बाबा ने कभी व्रत नहीं कराया, तो हम कैसे व्रत करके अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। तब दादी से पूछा गया फिर हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दादी ने अपने अनुभव और बाबा की आज्ञा के अनुकूल यही बात सुनाई कि ऐसे भयानक समय से आने से पूर्व हमें अपनी अनासक्त वृत्ति का निर्माण करना चाहिए। अगर हमारे अंदर अनासक्त वृत्ति होती है, स्वाद लेकर के रस के वशीभूत होकर के हम कुछ स्वीकार नहीं करते, परंतु जो शिव बाबा के यज्ञ से हमको मिला या भंडारे से प्राप्त हुआ वही शरीर के लिए उपयुक्त है, उतनी ही चीज शरीर को दे दीजिए। ऐसा नहीं कि आज तो पूरी बनी है, रोज पूरी तो बनती नहीं, दो की जगह चलो चार खा लेंगे, कोई रोज थोड़ी खाते हैं। आज समोसे बने हैं, वैसे तो सबको एक एक समोसा मिला है, क्यों नहीं दो समोसे और दो गुलाब जामुन भी खा लिए जाएं। कल मीठा ज्यादा नहीं खाएंगे, आज तो बन ही रहा है। तो स्वाद के वशीभूत और शक्ति के वशीभूत अगर हम कुछ स्वीकार करेंगे, तो जब ऐसा नाजुक समय आएगा तो जिनके अंदर अशक्ति की भावनाएं होंगी वो अनासक्त आत्मा न होने के कारण अशक्तियां उन्हें परेशान करेंगी और ऐसी आत्माओं के विषैले अन्न के समय उनको भूखा रहने में अन्न की याद में उनको प्राण तजने पड़ेंगे। इसलिए बहुत क्या पहले से अगर आपको अभ्यास करना है तो अपनी अनासक्त वृत्ति का निर्माण करो। कुछ भी स्वीकार करना है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और बाबा ने यज्ञवत्सों को यज्ञ में इस प्रकार की ट्रेनिंग दी थी कि जब ज्यादा खाने पीने को नहीं था तब बाबा ने एक बार खीर के साथ सबको कहा था, दूध में चावल डल के जो खीर बनती है, आज सभी बच्चे खीर के साथ भोजन करेंगे, आज और कुछ भी नहीं मिलेगा। शाम की क्लास होती थी उसमें बाबा अपने बच्चों की कचहरी करते थे और पूछते थे कि बच्चे सब सारा दिन अच्छे रूप से गुजरा, किसी ने कोई भूल की हो या किसी ने किसी की कोई भूल देखी हो तो वर्णन करो। तो एक बहन ने हाथ खड़ा किया, कहा बाबा आज बाबा ने आपने सुबह कहा था कि खीर के साथ भोजन खाना है, बाबा मैंने खीर भी नहीं खाई, मैंने तो पापड़ के साथ ही रोटी खा ली। बाबा ने कहा तुम्हारी पापड़ में आसक्ति थी, तुम्हें खीर नहीं अच्छी लगती थी, इसलिए तुमने पापड़ से खाई, ये तुम्हारा कोई त्याग नहीं था। त्याग उसे कहा जाता है कि जब कोई चीज हमारे पास है और उसमें आसक्ति नहीं है, अनासक्त है, और हम स्वीकार करते हैं, अगर खीर तुम्हारे शरीर को नुकसान नहीं देती थी तो तुमने खीर छोड़कर पापड़ से खाई और ये अपनी महानता दिखा रहे हो, ये महानता नहीं होती। महानता त्याग में है, महानता पदार्थ में नहीं होती। तो बाबा हम बच्चों को कैसे अनासक्त रूप बच्चों का होना चाहिए ये बच्चों को सिखाता रहा। आज आप अपने आप से पूछो, जब नाश्ता खाते हो, खाना खाते हो, उस समय आपकी अनासक्त वृत्ति, यहाँ ही नहीं अपने घर परिवार में भी अनासक्त वृत्ति होती है, कोई चीज आसक्तिवश मुझे अच्छी लगती है, स्वादिष्ट लगती है, ऐसा समझकर कभी स्वीकार ना कीजिए। समय ऐसा आएगा खाने को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों में अनासक्त भावना होगी, बाबा उन बच्चों को गारंटी दी हुई है कि अंत तक भी उनकी किचन से दाल रोटी नहीं फूटेगी, उनको दाल रोटी जरूर मिलती रहेगी, ये कभी ना सोचना हम भूखे रह जाएंगे। यहाँ तक बाबा ने कहा था कि मैं वतन में बुलाकर भी अपने बच्चों का पेट भर दूंगा, मैं कभी बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। इसलिए ऐसे सर्वशक्तिवान की पालना में हम सब पलने वाले बच्चे हैं, अपनी आसक्तियों का ध्यान रखें, ना पहनने में आसक्ति चाहिए, ना खाने में आसक्ति चाहिए, ना कहीं जाने में आसक्ति चाहिए, किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी तो बाबा की मदद या बाबा का सहयोग जरूर मिलेगा। और एक अंतिम बात सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगी, क्योंकि आपको भी शायद लग रहा होगा ब्रह्मा भोजन में पता नहीं क्या क्या बना होगा, कहीं हमारा मिस न हो जाए। सोचिए द्रौपदी का देगचा कभी खाली नहीं होता है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। कई बार किसी किचन में माल बहुत ज्यादा बच जाता है, वो दूसरी किचन में ले आते हैं, मिल जाएगा आप सबको। लेकिन एक मेरी बात सुन करके जाना, ये मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ, क्योंकि आज हमने देखा मोहिनी दीदी के तन में कैसे गुलजार दादी जी का आना, क्योंकि खास बाबा को संदेश दिया गया था मोहिनी दीदी के द्वारा कि बाबा से हम सब की रिक्वेस्ट करना कि थोड़े देर के लिए भी बाबा दादी को भेजे। तो मोहिनी दीदी ने कहा कि आपकी रिक्वेस्ट जो आप सब ने की, क्योंकि सभी भाई बहन आपस में मिलकर बैठे हुए थे, तो मैं रिक्वेस्ट बाबा को सुना दूंगी, आगे जैसे बाबा चाहेगा वैसे ही होगा। और बाबा ने बच्चों के रिक्वेस्ट को पूरा किया। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साकार बाबा के होते भी आत्माओं का आना और भोग स्वीकार करना, ये सब चीजें बहुत चलती थी। ये तो धीरे धीरे साक्षात्कार का पार्ट बाबा ने बंद करा दिया और यही कहा ये सब खेल पाल है, केवल मधुबन में ये पार्ट चलता है, बाकी बाबा की आज्ञा के अनुकूल सेवा केंद्रों में बाबा ने संदेशी के पार्ट को वास्तव में बंद कराया है। और उस समय जब संदेशियों का पार्ट था तो एक बार मैं गुलजार दादी जी के साथ ही रहती थी, तो गुलजार दादी जी ने मुझे एक माता जो सरदारनी थी कहा कि इसको मधुबन में आप लेकर जाओ, क्योंकि ये अपने पति को हर वर्ष भोग लगाने के लिए खास यज्ञ में जाती है, इसलिए इसका भोग है तो आप इसको लेकर जाओ। तो मुझे ना उसकी पहचान थी ना उसके पति के विषय में कुछ जानकारी थी। मैं उसको मधुबन में ले आई, उस समय छोटा हॉल भी, अभी जो हिस्ट्री हॉल है ये भी नहीं बना हुआ था, जहां पांडव भवन में इशू बहन का ऑफिस है और थोड़ी सी बाहर जगह है, यही हॉल होता था। दोपहर 12 बजे का टाइम था और वो बड़ा अनन्य बच्चा था जिसका विशेष भोग लगना था। 12 बजे का टाइम, एक तरफ बाबा और मम्मा बैठे थे, सामने संदेशी बैठी थी, इधर 5-6 भाई बैठे थे और इधर 8-10 बहनें बैठी थी, बस इतने ही बैठे थे। और संदेशी को कहा कि जाओ भोग लगा कर आओ। संदेशी ट्रांस में गई और थोड़े समय में वापस आ गई। ऐसा लगा कि इतनी जल्दी वापस आ गई, क्योंकि कुछ टाइम तो भोग लगाने में स्वीकार कराने में लग ही जाता है। लेकिन संदेशी ने आते ही कहा कि बाबा ने मुझे वापस भेजा है कि मेरा ये बच्चा सदा देसी घी में ही भोजन खाता है और ये भोजन जो तुम इसके लिए भोग में बनाकर लाई हो ये देसी घी में नहीं है, इसलिए इस बच्चे के लिए घी में भोजन बनवा कर लाओगी तब बाबा बच्चे को स्वीकार कराएगा। तो जब ये मैसेज आया तो भोली दादी को फौरन ये आज्ञा मिली, बाबा मम्मा ने कह दिया कि बच्ची तुम जल्दी तैयार करो। तो उसने इतना सा हलवा, इतने से आलू जीरी वाले और छोटी छोटी पूरी, जो भी 2-3 डबियों में तैयार, मैं समझती हूँ 15-20 मिनट के अंदर उन्होंने तीनों चीजें तैयार करके वे भोग पुनः हॉल में आ गया। संदेशी ट्रांस में गई और बाबा ने उस बच्चे को अवश्य भोग स्वीकार कराया होगा। कुछ समय के बाद देखा तो वो जो सरदार जी की आत्मा थी वो संदेशी के तन में प्रवेश हुई और प्रवेश होते ही साकार हो गई। साकार होकर बाबा से दृष्टि लेने लगा तो संदेशी की आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू ऐसे गिर रहे थे, हम सुनते जरूर थे कि आंसुओं की झड़ी लग गई, लेकिन मैंने प्रथम बार झड़ी किसको कहते हैं ये मैंने उस संदेशी के नेत्रों से आंसू गिरते देखे। बहुत रो रही थी और बाबा से दृष्टि भी ले रही थी, अब वो आत्मा जो उसमें प्रवेश थी, ये उस समय वो रो रही थी। बाबा ने संदेशी रूप में जब वो आत्मा प्रविष्ट हुई और वो रो रहे थे, तो बाबा ने उसको ऐसे बुला के और ऐसे गले लगा लिया। गले लगाकर बाबा ने अपना रुमाल निकाला, उसके आंसू पोंछ रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं, बच्चे अब रोने से क्या होगा, रो नहीं बेटा, चुप हो जाओ, बच्चे चुप हो जाओ, रो नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या होगा, रोना नहीं। इतना प्यार किया और उसके आंसू पोंछे, रोने से चुप कर आ रहे थे, कुछ क्षणों में वो आत्मा वापस चली गई। अब मुझे तो ये सब कहानी मालूम नहीं थी कि ये रोया क्यों और बाबा ने ये क्यों कहा कि अब क्यों रोते हो, अब जो होना था सो हो गया, अब रोने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने उनकी पत्नी जो सरदारनी थी उनसे पूछा कि सरदार जी इतना रोए क्यों थे, क्या कारण था। तब मुझे उनकी पत्नी ने सुनाया कि बाबा दिल्ली में जब आए थे प्रथम बार, तो कमला नगर सेवा केंद्र छोटा था, तो बाबा को छोटी जगह रहना अच्छा नहीं लगता था, जगह खुली होनी चाहिए। तो सेकंड टाइम जब बाबा ने आना था, तो इसी सरदार जी के घर में ही बाबा ठहरे थे और इसका घर काफी बड़ा था। इनकी पत्नी ज्ञान में चलती थी, सरदार जी ज्ञान में नहीं चलते थे, लेकिन पत्नी का रिगार्ड रखने के कारण उसने बाबा को निमंत्रण भेजा कि आप हमारे घर में अवश्य आकर ठहरिए। तो बाबा उनके घर में ठहरे थे। ये सारा उसकी पत्नी ने मुझे डिटेल सुनाया। कहा इतने घरू हो गया मेरा पति बाबा से, तो एक दिन बाबा के पास बैठा और बाबा को जाके कहा कि बाबा आज मैं आपको एक बात बताने आया हूं, लेकिन आप मुझे मना नहीं करना, प्लीज मुझे मना नहीं करना, लेकिन मैं आपको बता जरूर दूंगा। तब उसने बताया कि मैं रात को सोने से पूर्व 4 चम्मच विस्की के जरूर पीता हूं, और मैं जब 12 वर्ष का था तब से मुझे ये आदत पड़ी है, आज मेरी काफी बड़ी आयु हो गई है, मेरी ये आदत छूटती नहीं। तब बाबा ने कहा, बच्चे तुम 4 चम्मच के बदले विश्व की बादशाही खोदोगे, क्या तुम्हें विश्व की बादशाही बड़ी की 4 चम्मच बड़े। उसने कहा, बाबा मैंने आपको कहा था ना मुझे मना नहीं करना, ये मेरी आदत नहीं छूटती। बाबा ने पुनः नहीं कहा, बाबा को भी उसका सम्मान था, लेकिन बाबा ने समझाया अवश्य कि 4 चम्मच पीते रहोगे और विश्व की बादशाही को गवा दोगे, क्या ये भले बांसी है, क्या ये तुम्हारी समझ है। लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया, भले बाद में वो ज्ञान में चला और बहुत सहयोगी बना, उस समय सहयोगी बना जब बैगरी लाइफ में यज्ञ चल रहा था, बहुत सहयोग दिया। और जब वो अपने समय पर उसने शरीर छोड़ा, तब उसका भोग लगवाने के लिए उसकी पत्नी यज्ञ में ही जाती थी और बाबा मम्मा के सन्मुख भोग लगाती थी। तो वो जो बात, जो वो आत्मा प्रवेश हुई आई और रोई, वास्तव में देखा जाए तो बाबा ने सबसे पहले उसका रिगार्ड कितना रखा, प्यार कितना रखा कि बच्चा देसी घी खाता है इसे देसी घी ही बना करके भोजन देंगे तभी मैं स्वीकार कराऊंगा। और वो स्नेह दिया, लेकिन जब वो आत्मा आई और आंसू बहाए, तब बाबा का धर्मराज का रूप कैसा था? कोई कड़ा रूप नहीं था, लेकिन बड़े प्यार का रूप था। बच्चे, अब कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया। बाबा ने तुम्हें बहुत समझाया था, तुम नहीं समझे। अब मेरे बच्चे क्यों रोते हो? रो नहीं। आप देखिए, क्षमा का सागर, प्रेम का सागर, प्रेम एक तरफ है, लॉ दूसरी तरफ। ला और लव का फुल बैलेंस हमने अपने प्यारे बाबा में देखा। लव की जगह देसी घी बनवाया और ला की जगह उसको चुप कराया, लेकिन ये नहीं कहा कि चलो मैं तुझे माफ कर देता हूं। इसलिए बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं, बच्चे इस समय बाबा रहम दिन बल करके बच्चों को कदम कदम पर सावधानी देता है, कदम कदम पर सत्य पथ पर चलने के लिए दिखाता भी है मार्ग और बल भी प्रदान करता है। लेकिन जब बच्चे अवज्ञा कर लेते हैं तो अंत में पश्चाताप के बिना कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए बड़े ज्ञानदारी से हम प्यारे बाबा के बच्चे बन करके बाबा की आज्ञाओं को सुने, समझे और अपने जीवन में संजोए, यही बाबा की कृपा हम सब पर होगी। ओम शांति, ओम शांति। अभी 2 मिनट हम शांति में बैठ करके, एक मेरी रिक्वेस्ट जरूर है, आप उठें लेकिन वाचा ज्यादा ना। हमारे विद्यालय की ये महिमा है कि अगर किसी ने शांति का माहौल देखना हो तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में देखो। और बीच में कभी सम्मेलन हुआ, हजारों की संख्या में भाई बहन बैठे थे। गायक लोगों ने यही बोला कि हमने बड़ी बड़ी सभाएं देखी, लेकिन हमने ऐसी सभा नहीं देखी जहां इतना डिसिप्लिन और इतनी शांति। तो आप अपनी विशेषता को बनाए रखना। वाचा ज्यादा निकलती है तो वाचा की शक्ति कम हो जाती है। जहां आवश्यकता है वहां वाचा की आवश्यकता को पूरा कीजिए, जहां आवश्यकता नहीं वहां शांत रहिएगा। 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठ करके फिर बड़े शांत से प्यारे बाबा के ब्रह्मा भोजन की तरफ बढ़ेंगे।
हृदय को मोह कर हम सबके, तुम चली गई अंबर के पार। हृदय को मोह कर हम सबके, तुम चली गई अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार, कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठे दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठे दादी